हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत YouTube चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके मुसन्निफ़ आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 12, पेज नंबर 114 से। अब तक जो कुछ बयान हुआ इस हुकूमत के कुलियात थे कि जिसके दो हिस्से थे, कानून गुजारी और कवानीन का नफाज। और जैसा कि अदालत का महकमा दर हकीकत इजराई महकमे का एक जुज़ है, इंशाल्लाह हम इसकी अहमियत की खातिर अलग से बहस करेंगे। नंबर 2, तबई और बनाए गए कवानीन की अहमियत। ये बात बयान की जा चुकी है कि हमारी बहस के उसूल और मुसल्लिमात में से एक असल ये है कि माशरे के लिए कानून का होना ज़रूरी है, और दूसरी असल ये है कि हमारी नज़र में ऐसा कानून मोतबर है जिसका बनाने वाला बिला वास्ता या बिलवास्ता खुदा हो। इस नज़रिए के मुकाबले में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि माशरा कानून का न्याजमंद नहीं है, ख्वा वो कानून खुदा बनाए ख्वा दूसरे अफराद। अलबत्ता इस मौजूदा दौर में इस नज़रिए के तरफदार मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जिन हालात में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं सब कानून की ज़रूरत का एहसास करते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो माशरे के लिए कानून की ज़रूरत का मुनकर हो। इस दौर में यहाँ तक कि एक मुख्तसर से देहात के रहने वाले भी इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि ऐसे कवानीन और दस्तूरात होने चाहिए कि जिनकी वो पैरवी करें। लेकिन गुज़िश्ता ज़माने में ज़िंदगी बसर करने का तरीका बहुत सादा था। कुछ लोग इस बात के कायल थे कि हमें कवानीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी निगाह में अकल खुद ब खुद फितरी कवानीन को पहचान कर एक तरह के फितरी कवानीन से आगाह हो जाती है, और फिर उसे इसकी ज़रूरत नहीं रहती कि कोई कानून बनाए। गोया कदीम ज़माने में फितरी हुकूक और फितरी कवानीन का नज़रिया इंसानी माशरे में इस शक्ल में बयान हुआ कि जब लोग ये कहा करते थे कि किस कानून पर अमल करें, तो जवाब दिया जाता था कि अपने अंदर निगाह करो या इस दुनिया पर नज़र डालो ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा हुक्म और कानून वहाँ पर हुक्म फरमा है, वही कानून अपने माशरे में नाफिज होगा। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, यहाँ तक कि फितरी कानून के नज़रिए की बिना पर भी कानून की ज़रूरत एक मुस्लिम बात है, और यकीनी तौर पर इस लातूनी तारीख़ में ऐसे मुफक्किरीन का वजूद नहीं मिलता जो ये दावा करें कि इंसान किसी तरह के कानून का, यहाँ तक कि कानून फितरी का भी मोहताज नहीं है। इस सिलसिले में फ़लसफ़ी हज़रात के यहाँ जो भी बहस पाई जाती हैं वो इस बिना पर रही हैं कि क्या कवानीन अकली, फितरी और कवानीन इलाही से मुराद वही कवानीन हैं जिनको तमाम इंसान अपनी अकल से दरक करते हैं और वही माशरे के लिए काफ़ी हैं, या ख़ास तौर पर जो कवानीन बनाए गए हैं इसके भी हम मोहताज हैं। और जैसा कि हम ये बात कर चुके हैं कि अगर गुज़िश्ता ज़माने में फितरी कवानीन या अकली कवानीन या मुस्तकलात अकलिया अपनी मुख्तलिफ तफसीरों और ताबीरों के साथ कि जिनके बयान करने का ये मौका नहीं है, माशरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं, तो बग़ैर किसी शक व तरद्दुद के हमारे ज़माने के हालात के पेश नज़र ये फरीज़ा काबिले कबूल नहीं है, यहाँ तक के बयान और तौज़ी के लायक भी नहीं है। आज हर फर्द अपने गिरदो पेश मुशाहिदा करने से ये समझ जाता है कि हर रोज़ अपने दकीक अंदरूनी, बैरूनी और बैनुल अक़वामी रवाबित में सैकड़ों इज्तिमाई और बैनुल अक़वामी कवानीन का न्याजमंद है। इन्हीं में से एक माशरती और अंदरूनी मुल्क के कवानीन और दस्तूरात में ट्रैफिक और ट्रैफिक से मुतालिक कवानीन हैं। यह हकीकत है कि अगर इस ज़माने में कानून ना हो तो हर शहर और इलाके के ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम क्या होगा? अगर गाड़ियों की रफ़्तार और इनके चलने की सिमत दाएं सिमत चलें या बाएं सिमत, या ट्रैफिक के दूसरे कवानीन ना बनाए जाएं, तो कितने हादसात रोनुमा होंगे? दुनिया के किस इलाके में ऐसा ग्रोह मिल सकता है जो बग़ैर कानून के एक साथ एक जगह पर ज़िंदगी गुजारते हों और इनके दरमियान खतरात और हादसात रोनुमा ना होते हों? ये बात सही है कि तमाम ममालिक में ट्रैफिक का कानून एक जैसा नहीं हुआ करता है। मिसाल के तौर पर कुछ ममालिक जैसे इंग्लैंड, जापान वगैरह में गाड़ियाँ बाएं सिमत से चलती हैं, और कुछ ममालिक में, जिनमें से एक ईरान भी है, गाड़ियाँ दाएं सिमत चलती हैं। बहरहाल कानून बनाया जाता है और इंसान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह रहता है। वो ये जानता है कि किस सिमत हरकत करना चाहिए। मज़कूरा मिसाल माशरे में कानून की ज़रूरत का एक नमूना है, और बेशक ये ज़रूरत दूसरे मसाइल अस जुमला ख़ानदानी और बैनुल अक्वामी हुकूक में भी पड़ती है और इसका एहसास होता है। बैनुल अक्वामी कानून बनाने की ज़रूरत का एक नमूना दरियाए खुजर से मुतालिक मसाइल हैं, जो अब भी इसके हाशिया नशीन ममालिक के दरमियान इससे बहरामंद होने के तरीके में इख्तलाफ नज़र आता है। फितरी तौर पर ये काबिल कबूल नहीं किया जा सकता कि हर शख्स जिस तरह से चाहे दरिया के नीचे मौजूद तेल और मुनाबा और दूसरे ज़खायर से फ़ायदा उठाए, और तेल, गैस और दूसरी चीज़ों के निकालने में कोई कानून ना हो, बल्कि ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो ये मुआयन करें कि फ़लाँ मुल्क किस हद तक दरिया की गहराई मौजूदा ज़खायर से फ़ायदा उठा सकता है। जो मुश्किलात इस वक्त पड़ोसी ममालिक के लिए खड़ी हैं, वो इस वजह से हैं कि कोई मुअय्यन कानून मौजूद नहीं है, और सब दरिया के ज़खायर के बारे में एक आदिलाना तकसीम के लिए कवानीन और दस्तूरात की ज़रूरत का एहसास करते हैं। लिहाजा बशर की ज़रूरत के पेश नज़र कवानीन और दस्तूरात की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि कमेटियाँ और मवाफ़कतनामा और दरिया और साहिल से मुतालिक कवानीन, फ़िज़ां, कुएँ वगैरह चंद सदी कबल मौजूद नहीं थे, क्योंकि बशर को इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर अफराद, ग्रोह, कौमों और मुल्कों के दरमियान टकराव और अख्तलाफ की वजह से इस तरह के कवानीन की ज़रूरत महसूस हुई। इस बात को पेश नज़र रखते हुए कि कानून हर शख्स और माशरे के दायरा हुकूक को मुअय्यन करता है, कुरान मजीद इस उसूल की तरफ कि माशरती ज़िंदगी कानून की मोहताज है, खास तवज्जो दिलाई है। अलबत्ता शायाने जिक्र है कि कानून का वजूद आम तौर पर समाजी ज़िंदगी से मखसूस है, बल्कि अगर एक फ़र्द भी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो कमाल तक पहुंचने में कानून का मोहताज है। अलबत्ता फ़र्दी ज़िंदगी के लिए अख़लाक़ी कवानीन काफ़ी होते हैं, लेकिन जिस वक्त इज्तिमाई मसाइल में लोगों के हुकूक में टकराव पैदा हो जाता है, तो नतीजे में इख्तलाफात वजूद में आते हैं, और कभी कभी देखने में आता है कि अगर किसी ने हद से ज़्यादा नहर के पानी से फ़ायदा उठा लिया तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और ऐसी सूरत में इज्तिमाई कवानीन बनाने की ज़रूरत वाज़ा हो जाती है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ा और रोशन है कि माशरा कानून का मोहताज है, और हर अक्लमंद इंसान ये जानता है कि बग़ैर कानून के इज्तिमाई ज़िंदगी इंसान का आराम व सुकून और इससे बढ़कर मानवी सआदत ख़तरे में पड़ जाती है। जो मिसालें हमने अर्ज़ की हैं, इनसे ये बात वाज़ा हो जाती है कि इस तरह के मकामात के लिए काफ़ी नहीं हैं और हम कवानीन के मोहताज हैं, इसलिए कि अक़ल अदलो इंसाफ़ का हुक्म देती है, लेकिन ऐसे हिकमत अमली अपनाने के लिए जो अदलो इंसाफ़ कायम करे, एक दूसरे कानून के मोहताज हैं। मिसाल के तौर पर अक़ल ये हुक्म देती है कि दरियाए खुजर के ज़खायर को पड़ोसी ममालिक में आदलाना तौर पर तकसीम होना चाहिए, तो इस वक्त ये मसला पेश आएगा कि आदलाना तकसीम किसे कहते हैं? क्या आदलाना तकसीम इसको कहते हैं कि जिस मुल्क का रकबा ज़्यादा हो वो ज़खायर से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, या जिस मुल्क के पास दरिया का साहिली हिस्सा ज़्यादा हो या साहिल नशीन की तादाद ज़्यादा हो वो दरिया से ज़्यादा फ़ायदा उठाए? कानून साज के मरकज़ को इस तरह के सवालात का जवाब देना चाहिए। इसके अलावा दूसरे तमाम मकामात के लिए भी कानून साज का होना ज़रूरी है। देखना यह है कि कानून साज कौन हो। बे कवानीन का मर्जी इलाही और दीन के मुताबिक होना ज़रूरी है। इस्लाम का दावा है कि कवानीन को खुदा ने बनाया और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों पर नाजल किया है। लिहाजा पहली असल को कबूल करने के बाद कानून की ज़रूरत है। दूसरी असल ये है कि दीन को कानून साज के मरकज़ के उनवान से कबूल करें। इस मरहले में इस्लामी हुकूमत में ऐसे लोगों का होना मुमकिन है जो दीन को ना मानते हों। जा जाए कि एक शख्स गैर इस्लामी हुकूमत में दीन को कबूल करता हो। अगर कोई ये कहे कि मुझे खुदा के वजूद में शक है, लिहाजा मैं दीन और इसके कवानीन को कबूल नहीं करता हूँ, तो पहले मरहले में आप इसके लिए ये नहीं साबित कर सकते कि कानून खुदा को बनाना चाहिए। और बुनियादी तौर पर जो शख्स खुदा को नहीं मानता, वो कानून इलाही को भी नहीं मानता है। पहले फ़लसफ़ी और कलामी बहसों से खुदा के वजूद को साबित करना होगा, फिर कलामी एतबार से ये बात साबित करना होगी कि पैगंबर और दीन का भी वजूद है। बाद के मरहले में ये बात बयान की जाएगी कि वो कानून मुआतबर है जिसको खुदा ने खुद बनाया हो या खुदा के किसी वसीले के ज़रिए बना हो। इससे पहले हमने इस बात की तरफ इशारा किया था कि मुमकिन है कोई खुदा, दीन और नबुवत को कबूल करता हो, लेकिन वो इस बात का मुअतक़द ना हो कि समाजी कानून खुदा को बनाना चाहिए। इसकी नज़र में इंसान को खुदा की हम्दो सना, इबादत और इससे राज न्याज करना चाहिए। मस्जिदों और इबादत गाहों में आमदो रफ्त रखना चाहिए। लेकिन इंसान की समाजी ज़िंदगी खुदा से मुतालिक नहीं कि जिसके लिए खुदा कानून बनाए। इससे कबल की बहसों में हमने अर्ज़ किया था कि इस तरह का नज़रिया इस्लाम की रूह से सही नहीं है। दीन इस्लाम इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कोई ये कहे कि असल दीन यानी कुरान, अहादीस, पैगंबर इस्लाम, मतवातर रवायात और पैगंबरों आइमा अलैह सलाम की सीरत को तस्लीम करता हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम के समाजी कवानीन से मेरा कोई सरोकार नहीं है। नंबर 3, दीन की ज़रूरी बातों को कबूल करना लाजमी है। अफकार व अकायद के मजमू में कुछ साबित और यकीनी इजरा होते हैं जिनको इस्तलाह में ज़रूरियात कहा जाता है, और जो शख्स भी इस मजमू से वाकिफ़ है, चाहे इसको माने या ना माने, ये जानता है कि वो मजमू इन साबित अज्जा पर मुश्तमिल है। दूसरे लफ्ज़ों में मुमकिन है हर मजमू के सैकड़ों मेंबर हों, लेकिन इसका एक मायार होना चाहिए ताकि वो दूसरे मजमू से अलग हो सके। इस बिना पर अगर किसी ने दीन को एक मजमू की हैसियत से कबूल किया है, तो उसे ये कबूल करना होगा कि ये मजमू मुस्तकिल, दायमी और यकीनी मेंबर रखता है, ताकि तमाम मजमू से अलग पहचाना जाए। लेकिन अफसोस, कुछ अफराद कहते हैं कि हम इस्लाम को कबूल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं तस्लीम करते कि इस्लाम साबित उसूल रखता है और तमाम अशिया को मुख्तलिफ तफसीरों और मुख्तलिफ ताबीरों के काबिल जानता है। वो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इस्लाम कबूल करने से ये लाजम नहीं आता कि सब नमाज पढ़ें, वो नमाज का अकीदा रखें, और बाज़ अफराद पढ़ने के भी आदी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स मुसलमान है वो ज़रूर नमाज पढ़े और नमाज को इस्लाम के साबित अरकान समझे। रोज़े के सिलसिले में और इसी तरह दूसरे तमाम इज्तिमाई अहकाम के बारे में मुअतक़द हैं कि पैगंबर अकरम आइमा मासूमीन अलैह सलाम और तमाम मुसलमान इस पर अमल करते हैं, लेकिन ये तस्लीम नहीं करती कि इस्लाम का दारो मदार इसी रोज़े ही पर है। अगर ये ना हो तो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम किन बुनियादों पर कायम है कि अगर ना हो तो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि इस्लाम में तौहीद एक असल है, कि अगर कोई इसको कबूल ना करे तो मुसलमान नहीं है? तो आप जवाब में क्या कहते हैं कि हमारी फहम के मुताबिक इस्लाम से ये मफहूम समझना सही है? मुमकिन है कि दूसरा शख्स इस्लाम से एक दूसरा मफहूम समझता हो, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम से सिर्फ हमारा समझना सही है। मुमकिन है दूसरा शख्स इस्लाम से ये समझे कि खुदा एक है या चंद खुदा हैं, या दीन इस्लाम में खुदा का वजूद बिल्कुल नहीं है, और हम ऐसी दलील पेश नहीं करते जो ये साबित करे कि हम जो इस्लाम समझे हैं वो सबसे ज़्यादा सही है। अगर हम ये दावा करें कि हमने जो कुछ समझा है वो बिल्कुल सही है और किसी को दूसरी तफसीर करने का हक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारी समझ हमारी नज़र में बेहतर है, तो ऐसा दूसरों के बारे में भी सही है। बेशक ऐसे अफराद सिर्फ धोखाबाजी और चालबाजी का किस्सा रखते हैं, वरना किसी इल्म और इल्मी मरकज़ में दो मजमुआ कि जिनके मेम्बरान आपस में शरीक हैं, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। दो मजमुओं को एक दूसरे से इस वक्त जुदा किया जा सकता है जब इन दोनों के मेम्बरान मुख्तलिफ हों या कम से कम इन में से कुछ के दरमियान फ़र्क मौजूद हो, वरना दोनों मजमुए में से कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकेगा। हमेशा दो किस्म के मजमुए में फ़र्क होना चाहिए ताकि एक मजमुए को दूसरे से जुदा किया जा सके। अगर इनमें से एक मजमुए के तमाम मेम्बरान दूसरे मजमुए की जगह कायम मकाम हो सकते हों, मसलन इस मजमुए का अलिफ मेंबर दूसरे मजमुए के अलिफ मेंबर की जगह आए और इसी तरह इस मजमुए का बे का मेंबर दूसरे मजमुए के बे के मेंबर की जगह आए, तो इस वक्त एक दूसरे को मुस्तकिल समझना दुरुस्त ना होगा। अगर कोई मजमुआ दीन इस्लाम के उनवान से पहचाना गया हो, इसमें दूसरे दीन के मुकाबले में कोई खूबी होना चाहिए ताकि इससे अलग पहचाना जाए, लेकिन इसमें ऐसे साबित उसूल होने चाहिए जिन पर इस्लाम इस्तवार है। और ऐसी सूरत में अगर ऐसे उसूल जैसे तौहीद, नबूवत, माद या नमाज व इबादत के उसूल के मुआतकद हों और इसी के साथ इस सब को काबिले तब्दील समझें और इनके बारे में मुख्तलिफ तफसीरें बयान करें, तो हम किसी भी साबित रुकन को साबित नहीं कर सकते और ना ही ये दावा कर सकते हैं कि ये उसूल इस्लाम की एक असल है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि इस्लाम के नाम पर कोई मुअय्यन मजमुआ मौजूद नहीं है, तो ऐसी शक्ल में हम किस चीज़ से दिफा करें, किस तरह से लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें? अगर हम इनको मुसलमान होने का तरीका ना बताएं और इनसे ये कहें कि इस्लाम को जिस अंदाज से और जिस तरह से समझे हो वैसे ही इस पर अमल करो और इस्लाम से अपनी फहम और इदराक के मुताबिक अमल करो, अगर तुम इस नतीजे पर पहुँचे कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम इस नतीजे तक पहुँचे कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तो नमाज ना पढ़ो, तुम आज़ाद हो और अपनी फहम के मुताबिक अमल करो, तो इस्लाम से इस तरह का इदराक मसीहियत या दूसरे मजाहिब के इदराक से क्या फ़र्क रखता है? फिर क्यों लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दें? अगर ये तय है कि हर शख्स अपने फहम और इदराक के मुताबिक अमल करे और कोई उसूल और साबित कुलिया मौजूद ना हो, तो हम सिर्फ लफ्जी तौर से लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं। इस फिक्र की बुनियाद पर फिर ये फ़र्क बाकी नहीं रह जाता कि हम लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे रहे हैं या मसीहत की तरफ या इस्लाहन बेदीनी की तरफ दावत दे रहे हैं। नंबर 4, इस्लाम उसूल और साबित मार्फतें। किसी शख्स का ये कहना धोखेबाजी और नफाक है कि मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ लेकिन इस्लाम से एक साबित मफहूम को दर्क नहीं करता। इसके तमाम उसूल काबिले तब्दील हैं और मुख्तलिफ तफसीरें हैं। ऐसी सूरत में इस्लाम से वही बात समझना मुमकिन है जो मसीहत से समझी जाती है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा और एक मुसलमान और मसीह में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मसलन हर एक बिल्डिंग मुस्तहकम अज्जा से बनती है, जैसे सतून, दीवार और छत वगैरह, और फिर एक मुद्दत के बाद वीराने में तब्दील हो जाती है। ये दावा नहीं किया जा सकता कि बिल्डिंग के अज्जा मुस्तहकम नहीं हैं। ये नहीं कह सकते कि एक बिल्डिंग में सतून, दीवार और छत हैं तो बिल्डिंग है, और अगर नहीं है तब भी बिल्डिंग है। अगर ज़मीन, हवा और दरिया में हो तब भी बिल्डिंग, और इसमें किसी तरह की खसूसियत और मुस्तहकम और साबित अज्जा मौजूद नहीं होते हैं। इसी तरह इस्लाम भी साबित और मुअय्यन अज्जा से वजूद में आता है, और अगर इस्लाम में साबित और कुल्ली उसूल ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मजमुआ है और वो इसी तरह का मजमुआ है। इस बिना पर अगर कोई इस्लाम को कबूल करे तो उसे चाहिए कि इस मजमुए से एक हिस्से को साबित अज्जा के उनवान से कबूल करे। अलबत्ता मुमकिन है कि इस मजमुए का एक हिस्सा मशकूक भी हो, या ऐसा खुला हुआ मजमा हो कि जिसमें कुछ अज्जा कम और ज़्यादा हो सकते हों। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक मजमे में किसी तरह के साबित अज्जा नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से एक मुशख़्स मजमू के उन्वान से बाकी रहे। इस्लाम के बुनियादी और कुल्ली अनासर को दोस्त और दुश्मन सब जानते हैं। तौहीद, नबूवत और मुआद के अलावा इस्लाम में दूसरे भी सियासी अमूर हैं जो सब जानते हैं। हद है कि मुनकरीन खुदा भी इससे वाकिफ़ हैं। नमूने के तौर पर नमाज और हज को इस्लाम के असली अनासर का जुज़ समझा जाता है। दुनिया के तमाम अफराद ये जानते हैं कि मुसलमान मखसूस दिनों में हज करते हैं। ऐसी सूरत में कोई ये नहीं कह सकता कि जिस इस्लाम को मैंने समझा है इसमें हज नहीं है। सभी ये जानते हैं कि इस्लाम में नमाज है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ लेकिन इस्लाम से जो मैं समझा हूँ इसकी बुनियाद पर नमाज इस्लाम में नहीं है, तो ऐसा शख्स या इस्लाम को नहीं समझा या झूठे तरीके से अपने को मुसलमान कहलवाता है, जबकि मुनाफिक या धोखेबाज है। और ये इसलिए करता है कि अपने को मुसलमान बताकर एक मुसलमान की खसूसियत से महरूम ना करे और उसे इस्लामी माशरे से निकाला ना जाए, वरना नमाज, रोज़ा और हज इस मजमूए के साबित अरकान में से हैं और तमाम मुसलमानों के नज़दीक दिन के ज़रूरी मसाइल का जुज़ हैं। अगर कोई इस्लाम से वाकिफ हो तो क्या वो ये कह सकता है कि इस्लाम में चोरी से रोकने के लिए सज़ा का कानून नहीं है, जबकि कुरान ने सूरह मायदा आयत नंबर 38 में इस मसले की सराहत की है। इसी तरह दूसरे तमाम मकामात पर भी कुरान की सरीह नस मौजूद है। लिहाजा इस्लाम के ज़रूरी अहकाम साबित कर दिए गए हैं और अब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम फिर से इन्हें समझें और एक एक को साबित करें। इस बिना पर अगर ये साबित हो गया कि इस्लाम जिसकी बुनियाद कुरान पर है वो खुदा की जानिब से आया है और हक है, तो ये कबूल करें कि जो कुछ भी कुरान में है वो हक है और कुरान एक तरह के महक्कम, कतई और ज़रूरी अमूर पर मुश्तमिल, अलबत्ता कुछ आयतों की मुख्तलिफ तफसीरें हो नामुमकिन हैं। लेकिन एक आयत से सिर्फ दो मुख्तलिफ तफसीरों का वजूद इस बात की गुमाजी नहीं करता कि कुरान से किसी साबित और कतई अमूर का इस्तनबात नहीं हो सकता और हर शख्स जो चाहे इससे दर्क करे। अगर कोई शख्स अरबी ज़बान से वाकिफ है और कुरान की तरफ मुराजा करे तो वो कुरान से एक ऐसे मतलब को दर्क कर सकता है कि जो इंसान के मुख्तलिफ अदराकात से कोई रब्त ना रखता हो और ना ही इसका गुज़िश्ता अफकार व मुसलिमात से कोई राबता हो और ना ही हमारे इन कवानीन के ताबा हो जिनको हम उलूम से दर्क करते हैं। मसलन कुरान की एक आयत है जो हमें नमाज का हुक्म देती है, या एक ऐसी आयत है जो चोर के हाथ काटने का हुक्म देती है। वो शख्स जो किसी ज़माने में अनासिर छार गाना सातवें आसमान का मुअतकद था, आयत से वही समझ रहा था जो आज अनिश्चन की नस्बत की थ्योरी के बाद समझ रहा है और इस्तिनबात कर रहा है। और ये नहीं कहा जा सकता कि आज अनिश्चन की नस्बत की थ्योरी पाई जा रही है, लिहाजा आयत के मायने बदल गए। मुमकिन है कि ऐसी आयत हो जिसके कलमात लुगात में तब्दील और दूसरे इल्मी मसाइल से मरबूत हों, लेकिन कुछ मतालब ऐसे हैं जिनका समझना दूसरे मुख्तलिफ उलूम से मरबूत नहीं है और फितरी तौर पर इनमें तब्दीली का शुबा भी नहीं पाया जाता। नंबर 5, कुरान करीम के साबित और कतई अहकाम व मफाहिम। हम ये बयान कर चुके हैं कि इस्लाम में एक तरह के ज़रूरी अहकाम मौजूद हैं जो साबित हैं। ख्वाह कोई मुसलमान हो ना हो, ये जानता है कि इस्लाम में कुछ ज़रूरी मसाइल हैं। इसी तरीके से एक तरह के कतई मफाहिम कुरान से भी इस्तिनबात होते हैं। चाहे कोई कुरान को कबूल करे या ना करे, वो कुरान से इन मतालिब को दर्क करता है और इन मतालिब का समझना अरबी से वाकफियत पर मौकूफ़ है, इसके मुसलमान होने पर नहीं। हमारी गुफ्तगु इन चीज़ों के बारे में है जो किसी एतबार से काबिल तगैयुर नहीं है और नज़रियात के अख्तलाफ और इदराक के अख्तलाफ के बावजूद इसके मायने और मफहूम अपनी जगह पर साबित और कतई और काबिल एतराज़ हैं। मसलन जुमला अकीमुस सलाता के मायने नमाज के वाजिब होने के हैं और जुमला कुतिबा अलैकुमुस सयामा के मायने रोज़े के वाजिब होने के हैं। चाहे जैसी इल्मी थ्योरियां इजाद हों और इसमें तजदीद नज़र हो, लेकिन कुरान के फ़हम व इदराक में तब्दीली नहीं आएगी। इसके अहकाम अपनी जगह पर मुसल्लम हैं। जिस वक्त हम दीन की ज़रूरी मसाइल के बारे में गुफ्तगू करते हैं, गो यकीनी मुस्तहकम नाकाबिले तब्दील समझते हैं, क्योंकि इनको इस्लाम के असली और कतई मुनाबा यानी कुरान और अहादीस से हासिल किया गया है। और जो लोग ज़रूरियात दीन के मुनकर हैं और लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि इस्लाम से मुस्तहकम और यकीनी उसूल नहीं समझा जा सकता, तो या तो वो मसले में शुबे के शिकार और जाहिल हैं, या तासुब करते हैं और इस्लाम पर ईमान नहीं रखते हैं बल्कि मुसलमानों से खेलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम की सियासी हिकमत अमली साबित उसूल और ज़रूरियात में से एक ये है कि कानून खुदा की तरफ से बने, और जो लोग कानून इलाही के मुनकर हो गए हैं दरअसल वो ज़रूरियात दीन के मुनकर हैं। जिस तरीके से कुरान करीम से नमाज़ पढ़ने के वजूब को समझा जाता है, जनाकार मर्द और जनाकार औरत का हुक्म समझा जाता है, और जितनी सराहत के साथ कुरान में नमाज और रोज़े का हुक्म साबित है, इतनी ही सराहत के साथ पैगंबर की अताअत भी वाजिब है। और शरीयत इस्लाम में पैगंबर के मकाम को मुफ्तरजुलता के नाम से पहचाना गया है। खुदावंद आलम इस बारे में फरमाता है, तर्जुमा, ऐ ईमानदारों, खुदा की अताअत करो और इसके रसूल की, और जो तुम में से अव्वलुल अमर हों। सूरह नसा आयत नंबर 59। इसी तरह इरशाद होता है, तर्जुमा, हाँ जो तुमको रसूल दे दें वो ले लिया करो, और जिससे मना करें इससे बाज रहो। सूरह हशर आयत नंबर 7। जब तक मंदरजा बाला आयात के मतालिब को तस्लीम ना किया जाए जिनमें इस्लाम के ज़रूरी अहकाम बयान हुए हैं, वरना इस वक्त तक इस्लाम को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और ऐसी शक्ल में इंसान का इन लोगों में शुमार क्या होगा जिनके कौल की हद, खुदावंद आलम यूँ हिकायत कर रहा है। तर्जुमा, और कहते हैं कि हम बाज़ पैगंबरों पर ईमान लाए हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 150। और इसी के बाद खुदा इनके बारे में ये भी फरमाता है, तर्जुमा, यही लोग हकीकतन काफिर हैं। सूरह निसा आयत नंबर 151। लिहाजा जो शख्स इस्लाम का मुआतकद है, इसको एक सिरे से इसके तमाम कवानीन और अहकाम को मानना चाहिए, और यह अकीदा रखना चाहिए कि इस्लाम के तमाम ज़रूरी अहकाम इल्मी तब्दीलियों के ताबा नहीं हैं, कि जो इल्मी नज़रियात या नई इल्मी थ्योरियों की वजह से इनमें तब्दीली रोनमा हो जाए। ऐसी शक्ल में जो नमाज से मरबूत आयत को हक समझता है और चोरी से मुतालिक आयत को हक जानता है, अगरचा उसे कुरान में मुतशाबा और महम्मल आयात मिलती हैं जिनको वो इस्लाम के मुतग़य्यर कानून की हैसियत से पाता है, लेकिन ये यकीन रखता है कि कुरान और इस्लाम में ऐसे मुस्तहकम और यकीनी उसूल मौजूद हैं जो दूसरे तमाम मुतग़य्यर उसूल से अलग पहचाने जाते हैं। नंबर 6, इस्लाम मुख्तलिफ ताबीरें रखता है, एक एतराज़ और इसका जवाब। ये बात तो वाज़ा है कि कुछ आयात से मुख्तलिफ तरह के मतालिब समझे जाते हैं और मुख्तलिफ तरह की तफसीरें बयान की जाती हैं, और इस्लाम के कुछ अहकाम में इख्तलाफ नज़र पाया जाता है, जो इस बात का बायस नहीं बनता कि इस्लाम के सारे कवानीन मुश्तबा और इख्तलाफी हैं। इस्लाम में ऐसे हज़ारों कतई अहकाम मौजूद हैं जिनके बारे में तमाम इस्लामी फ़िरकों का इत्तेफाक़ नज़र पाया जाता है, लेकिन फ़रई और बहुत मुख्तसर अहकाम में शिया और सुन्नी हजरात के दरमियान इख्तलाफ पाए जाते हैं, और फ़िक्के के एक अजीम हिस्से में फ़राकीन के यहाँ इख्तलाफ नज़र नहीं पाया जाता है। इसी तरह से शिया फ़िरके के कुछ अहकाम में फ़िक्का के दरमियान फतवों में इख्तलाफ का होना इस बात की दलील नहीं है कि तमाम अहकाम में इख्तलाफ पाया जाता है। जिस तरह एक मखसूस बीमार के बारे में दो डॉक्टरों की तजवीज़ का अलग अलग होना और दोनों के नुस्खे का फ़ायदा भी होना इस बात की दलील नहीं है कि इल्म डॉक्टरी में پائیدار اور استوار قوانین نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام میں ایک طرح کے قطعی اور یقینی احکام موجود ہیں جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور بعض مقامات پر اختلاف نظر کا ہونا ہمیں اس بات کا سبق نہیں دیتا کہ ہم مسلم احکام نہیں رکھتے اور اس بہانے سے ہم اسلام سے الگ ہو جائیں۔ اس کے باوجود آج جب اسلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو قلبی مریض اور قرآن کے ارشاد کے مطابق ترجمہ، بس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، کہتے ہیں کہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس کو شیعہ بتاتے ہیں، یا وہ اسلام جس کو سنی بتاتے ہیں، یا وہ جس کو فقہ بتاتے ہیں، یا وہ جس کو دانشور حضرات بتاتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ ہم اعتقادات، اخلاقیات، فردی احکام، سماجی احکام، تجارت کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین میں ایک طرح سے ثابت حقوق اور ہزاروں متفق علیہ قوانین رکھتے ہیں، تو پھر کیوں وہ لوگ بجائے اس کے کہ یقینی اور مسلم قوانین کو اپنائیں، اختلافات اور افتراقات کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ہماری یونیورسٹیوں کو اسلامی ہونا چاہیے، تو کیوں روحی بیمار اور کچھ فکر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون اسلام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہی اسلام جو یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، عدالت کو قائم کرنا چاہیے، کیا ان چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اگر آپ انہیں یقینی اور متفق علیہ قوانین کو، جن کے بارے میں فرقین میں اختلاف نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں اپنائیں تو آپ نہایت خوش ہوں گے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام کے مطابق عمل کریں تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ فقہ کا اسلام نافذ کیا جائے اور روشن فکروں کا اسلام نافذ نہ کیا جائے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔